श्यामली जब अपने कमरे में पहुंची तो दरवाज़ा बंद करते ही उसने गहरी सांस छोड़ी, जैसे सीने पर रखा कोई अदृश्य बोझ थोड़ी देर को हल्का हो गया हो। कमरे की पीली बत्ती जल रही थी, पर उसका मन अजीब सी छाया में डूबा था। वो पलंग के किनारे बैठ गई, हाथ अपने माथे पर रख लिए, और उसी पल सुषमा देवी की नज़रें फिर से उसकी आंखों के सामने तैर गईं। वो नज़रें साधारण नहीं थीं, घूरना नहीं था, न ही गुस्सा। कुछ ऐसा था जैसे पहचान की परतों को टटोल रही हूँ। वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी, श्यामली ने खुद से बुदबुदाकर कहा। उसने आंखें बंद की, दिमाग पर जोर डाला। बचपन, रिश्तेदार, कोई पुरानी यात्रा, कोई शादी ब्याह, कुछ भी, सब धुंधला। उसे साफ याद था वो सहारनपुर में ही पली बढ़ी थी। सुषमा देवी का नाम भी उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था। फिर भी उनके देखने के तरीके में अजीब सी जान पहचान थी, जैसे कोई अनकहा सवाल हो जिसका जवाब सिर्फ आंखों से मांगा जा रहा हो। श्यामली उठकर शीशे के सामने खड़ी हो गई, अपने चेहरे को गौर से देखने लगी। क्या उसमें कुछ ऐसा था जो किसी पुराने जख्म या याद को जगा दे? उसकी अपनी आंखें थोड़ी खबाई हुई थीं, होंठ सूखे हुए। उसने पानी का घूंट लिया, पर बेचैनी गले से नीचे नहीं उतरी। उसी समय बाहर से रसोई की आवाज़ें आने लगीं, बर्तन रखने की, सब्जी चलाने की। शाम ढल चुकी थी और घर में धीरे धीरे रात की तैयारियां शुरू हो गई थीं। श्यामली ने घड़ी देखी, डिनर का वक्त होने वाला था। विश्वनाथ जी अभी तक नहीं आए। उसने अनायास ही दरवाजे की तरफ देखा। आमतौर पर इस समय तक उनके कदमों की आहट सुनाई देने लगती थी, पर आज घर के गलियारों में सिर्फ सन्नाटा था। वो और ज्यादा बेचैन हो उठी। सुषमा देवी का आना, उनका कमरा, उनकी बातें और अब ये इंतजार, सब कुछ मिलकर मन में अजीब सा दबाव बना रहा था। श्यामली पलंग पर लेट गई, पर आंखें बंद करने पर भी चैन नहीं मिला। सुषमा देवी का चेहरा बार बार उभरा था, वही ठहरी हुई नज़र, वही हल्की सी मुस्कान जो पूरी नहीं खुलती थी। कहीं उन्होंने मुझे किसी और समझ तो नहीं लिया, या फिर कहीं मैं ही कुछ भूल तो नहीं गई? उसने करवट बदली। बाहर आंगन से किसी के हंसने की आवाज़ आई, फिर चुप्पी। घर अपनी रफ्तार से चल रहा था, पर श्यामली का मन वहीं अटका था, उस एक नज़र में जो जैसे उसके भीतर झांक गई थी। दरवाजे के बाहर हल्की परछाई हिली, शायद कोई गुजरा था। श्यामली उठकर बैठ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, पर कोई नहीं आया। कमरा फिर शांत हो गया, और उसी शांति में सवाल अधूरा, यादें धुंधली, और श्यामली का मन उस अनजानी पहचान के डर में उलझा हुआ। मोबाइल की हल्की सी कंपन ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। श्यामली चौंक कर उठ बैठी। तकिए के पास रखा फोन कांप रहा था, स्क्रीन जली, नाम चमका विश्वनाथ। वो कुछ पल यूं ही फोन को घूरती रही, उंगलियां अपने आप आगे नहीं बढ़ीं। दिल के भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे खुशी दरवाज़ा खटखटा रही हो, पर भीतर कहीं कुछ उसे रोक रहा हो। वही भारीपन, वही अनजाना दबाव जो सुषमा देवी की नज़रों के बाद से दिल में उतर आया था। आखिरकार उसने कॉल उठाई। हाँ, आवाज़ सामान्य रखने की कोशिश थी, पर भीतर की राहत को उसने बाहर नहीं आने दिया। दूसरी तरफ से विश्वनाथ की आवाज़ आई, थकी हुई मगर जानी पहचानी। श्यामली, अभी मीटिंग से निकला हूँ, ज़रा बताने के लिए फ़ोन किया। श्यामली पलंग के किनारे सीधी बैठ गई। सब ठीक तो है? उसने पूछा। हाँ, सब ठीक है, विश्वनाथ बोला। बस ऑफिस के काम से दो दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, अचानक प्लान बना है। श्यामली ने खिड़की की तरफ देखा, बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। दो दिन, उसने धीमे से दोहराया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने वही कहा जो उसके मन में उठाया था। वैसे आप हमेशा तो सासू माँ को या आर्यन को फ़ोन करते हैं, आज मुझे कैसे याद कर लिया? उसकी आवाज़ में शिकायत कम थी, हैरानी ज्यादा, जैसे वो खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानना चाहती हो। दूसरी तरफ विश्वनाथ एक पल चुप हो गया। श्यामली ने फोन कान से लगाए रखा, पर दिल की धड़कन तेज होती चली गई। उसे लगा जैसे ये कॉल सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं था, जैसे कुछ और भी कहा जाना था जो अभी शब्दों में नहीं आया। रसोई से किसी ने आवाज़ दी, मालकिन। श्यामली ने जवाब नहीं दिया, वो फोन को पकड़े रही, उस एक पल में अटकी हुई जहाँ सवाल हवा में लटका था और जवाब आने से पहले ही सब ठहर गया। फोन के उस सिरे से विश्वनाथ की आवाज़ थोड़ी साफ हुई, जैसे उसने सांस समेटकर बात आगे बढ़ाई हो। तुम मेरी पत्नी हो, उसने कहा, तो क्या तुम्हें फोन नहीं कर सकता? श्यामली पल भर को चुप हो गई, उंगलियां मोबाइल के किनारे को दबा रही थी। दिल के भीतर कहीं कुछ हल्का सा कांप गया, पर उसने आवाज़ को वैसा ही सपाट रखा। यही तो, उसने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हो, तुम मेरी पत्नी हो, क्या आप अधिकार जताना चाहते हो? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी की आवाज़ आई, पर वो हंसी पूरी नहीं थी, जैसे बीच में ही रुक गई हो। अधिकार जताना? विश्वनाथ ने कहा। मैं अधिकार क्यों जताऊंगा, तुम मेरी पत्नी हो, इसमें जताना कैसा? उसके शब्दों में सादगी थी, पर उस सादगी के नीचे एक अपनापन भी था, जैसे वो खुद भी शायद नाम नहीं दे पा रहा था। श्यामली खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर आंगन में पीली रोशनी फैली थी, तुलसी के चौरे के पास दिया जल रहा था। उसने बिना देखे ही कहा, हर बात को इतना सीधा भी नहीं कहा जाता विश्वनाथ जी, कभी कभी शब्द बोझ बन जाते हैं। विश्वनाथ कुछ पल चुप रहा, उसे समझ आ रहा था। और नहीं भी, तुम ज्यादा सोचती हो, उसने हल्की लहजे में कहा, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। हाँ, श्यामली ने भी वैसा ही लहजा अपनाया, आप हमेशा ऐसे ही कहते हो। दोनों हंसे नहीं, दोनों में आह भी नहीं भरी, पर उस खामोशी में एक अजीब सी गर्माहट थी। विश्वनाथ को याद आया ऑफिस से निकलते वक्त भागती जिंदगी के बीच अचानक उसका नाम कैसे जुबान पर आ गया था, और श्यामली को याद आया फोन बजते ही दिल कैसे एक पल को उछल पड़ा था, पर इन बातों का जिक्र नहीं हुआ। दो दिन लगेंगे, विश्वनाथ ने फिर कहा, काम निपटाकर लौट आऊंगा।
कोई जल्दी नहीं है, श्यामली ने तुरंत कहा। यहाँ सब ठीक है। वो झूठ नहीं बोल रही थी पर पूरी सच्चाई भी नहीं कह रही थी। सुषमा मासी आ गई हैं, उसने औपचारिक सा जोड़ा। हाँ पता है, विश्वनाथ बोला, आर्यन ने बताया था। श्यामली के होंठों पर हल्की सी रेखा उभरी, न मुस्कान न शिकवा, बस एक एहसास की हर बात का केंद्र वो अभी नहीं है। आपने उन्हें फोन किया, उसने यूं ही पूछा। हाँ, विश्वनाथ ने सहजता से कहा। वो ठीक तो है ना? जी, श्यामली बोली, बहुत ठीक है। उस बहुत में न जाने क्या क्या छुपा था, पर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। फोन पर फिर थोड़ी देर चुप्पी छा गई, ऐसी चुप्पी जिसमें बातें पूरी नहीं होती, बस महसूस की जाती हैं। श्यामली को लगा जैसे वो कहना चाहती है ख्याल रखना, और विश्वनाथ को लगा जैसे वो सुनना चाहता है जल्दी लौटाना, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, विश्वनाथ ने आखिर में कहा, मैं पहुंचकर फोन करूंगा। ठीक है, श्यामली ने भी वही शब्द दोहराए। कॉल कट हो गई। श्यामली ने फोन नीचे रख दिया। कमरे की दीवारें वही थी, रोशनी वही थी, पर मन के भीतर कुछ बदल चुका था। वो जानती थी ये बातचीत किसी शिकायत की नहीं थी, न ही किसी अधिकार की। ये उन दो लोगों की थी जो एक दूसरे की परवाह करते थे, बस जताने से डरते थे। श्यामली ने गहरी सांस ली। बाहर से फिर रसोई की आवाज आई, बड़ी ठाकुराइन। उसने फोन उठाकर स्क्रीन बंद की और धीमे से कहा, आ रही हूं। पर उसके कदमों में एक हल्की सी रुकावट थी, जैसे दिल अभी भी उस अधूरी बातचीत के पास खड़ा हो। और कहीं दूर शहर से बाहर जाने की तैयारी करता हुआ विश्वनाथ भी एक पल के लिए ठहर गया, बिना वजह बिना नाम।